दिन भर 30 जुलाई मंगलवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। राज्यसभा में भारी बहस के बाद 3 तलाक को आपराधिक बनाने वाला कानून पास।
सही कहा एक दो लोगों ने, हमने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन क्या बोल रहे हैं, 3 तलाक गलत है, लेकिन तो मतलब 3 तलाक को नाम के लिए गलत कह दो, बाकी जो होता है चलने रहने दो।
उन्नाव रेप मामले की पीड़िता के सड़क हादसे में घायल होने पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा।
सरकार आपकी, पुलिस लोगों को मरवा रही, वो पुलिस आपकी, पुलिस अब नीचे से नहीं सुन रही है, पुलिस वो कह रही है जो सरकार कहलवाना चाहती है।
जानेंगे कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ कैसे हुए गायब, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। लोकसभा में पारित होने के बाद 3 तलाक पर विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया है। विधेयक के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े। मोदी सरकार के लिए लोकसभा से पारित होने के बाद मुस्लिम विधेयक 2019 को राज्यसभा में पारित कराना चुनौती भरा था, लेकिन टीआरएस, जेडीयू और एआईएडीएमके के वॉकआउट करने के चलते राज्यसभा से भी ये पारित हो गया। दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रायबरेली में 28 जुलाई को कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की कार को एक ट्रक ने इस तरह टक्कर मारी कि पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि पीड़िता और उनके वकील फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। इस मामले पर विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक में सवाल उठा रही हैं। विपक्ष का सवाल है कि कुलदीप सिंह सेंगर अब तक पार्टी में क्यों बने हुए हैं। इस पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर पार्टी से निलंबित किए गए थे और अभी भी निलंबित हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से मुखातिब हुए संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस अभी भी पुराने वक्त में है और उन्हें भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और अगर देश उनके साथ है तो मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। मैं बुधवार को बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। मैंने सिर्फ पार्टी ही नहीं छोड़ी है, राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा,
निकट भविष्य में जो भारत के अपने चैलेंजेस हैं, भारत की अपनी ऊंचाई रही है, पहले की, आज की और आने वाले जो सपने हैं, देश के 65% नौजवानों के जो सपने हैं, उन सपनों का अमली जामा पहनाया जा सकता है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैं आज यही सारे कारण थे कि कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी की तरफ बढ़ रहा हूं और कल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करूंगा।
ये थे संजय सिंह के शब्द। पाकिस्तानी सेना का एक विमान रावलपिंडी शहर के एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के सभी 5 सदस्य और 12 नागरिक मारे गए। सेना ने कहा है कि 12 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। विमान हादसे के बाद सेना ने तुरंत आग बुझाने का काम किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये विमान प्रशिक्षण के लिए उड़ाया जा रहा था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन के अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी प्रांत शिनजियांग के शिक्षण केंद्र में रहने वाले अधिकतर लोग अपने घर लौट चुके हैं। माना जाता है कि लगभग 10 लाख अल्पसंख्यक वीगर और अन्य मुसलमानों को इन केंद्रों में बिना किसी सुनवाई के महीनों और कईयों को वर्षों तक बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि चीन के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। एक स्थानीय अधिकारी शोहरत जाकिर ने कहा, करीब 90% लोगों को अपनी पसंद की नौकरी मिल गई है और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। स्थानीय अधिकारी शोहरत जाकिर के शब्द। तंजानिया सरकार का विरोध करने वाले एक जाने माने पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एरिक काबेंडेरा कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के लिए लिखते हैं। सोमवार की दोपहर को उन्हें उनके घर से उठा लिया गया था। शुरुआत में कहा गया था कि उनका अपहरण कर लिया गया है। इस कार्रवाई पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पत्रकारों के हित के लिए काम करने वाली संस्था कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने एरिक की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा है कि इस घटना से ये बात एक बार फिर साबित हो जाती है कि राष्ट्रपति जॉन मागुफुली के राज में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। काफी समय से प्रस्तावित तीन तलाक बिल आखिरकार आज राज्यसभा से भी पास हो गया। तीन तलाक यानी तलाक़े बिदत अब गैर कानूनी हो गया है। अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। इस मामले पर बीबीसी संवाददाता विनीत खरे सुबह से नजर बनाए हुए हैं। वे इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। जी विनीत, संसद में आज पूरे दिन क्या क्या हुआ जरा बताएं।
शायद 241 सदस्य हैं राज्यसभा में, तो दो तरीके थे ये बिल पास होता। या तो आपके पास संख्या होती, सरकार के पास, जो कि संख्या नहीं थी, और दूसरा तरीका था कि आप जो कुल संख्या है संसद में जो सांसदों की, उसको आप कम कर दें। तो जो एब्सटेंशंस रहे या पार्टियों का वॉकआउट रहा, तो जैसे आपने न्यूज़ में भी सुना, JDU, AIDMK और TRS ने वॉकआउट किया, कई सदस्य नहीं आए, तो जैसे शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल एब्सटेन रहे, तो उससे जो संख्या थी कम हो गई और 99-84 से जीत गया।
काफ़ी बहस भी हुई
और बेसिकली ये सुबह करीब 12 बजे से बहस शुरू हुई थी,
और इसके लिए वक्त 4 घंटे तय किया गया था।
4 घंटे जो PTI की रिपोर्ट है उसमें 4 घंटे का जिक्र था, लेकिन ये करीब 6 घंटे चली सुबह। BJP पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल था। कांग्रेस की यामी याग्निक है, आइए सुनते हैं उन्होंने इस बहस में क्या कहा।
आई एम नॉट अगेंस्ट द बिल, आई एम वेरी मच फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। मैं महिला भी हूं, लॉयर भी हूं, और इतने महिला के केस मेरे पास आते हैं, मैं आंकड़े भी दे सकती हूं, हर चीज का आंकड़ा दे सकती हूं। रोटी काली हो गई ऐसा नहीं। तुमने मुझे क्यों कहा कि मुझे संडे है तो मूवी देखने ले चलो, तुम नहीं कह सकती हो। ऐसे भी कारण है, और ऐसे एक कॉम के नहीं है, इट इज अक्रॉस वुमेन एंड एवरी वुमन समवेयर और दी सम पॉइंट इन लाइफ फेसेस दिस प्रॉब्लम सर। तो आप अगर ऐसा कहते हैं कि हमें इस बिल से वी आर एबॉलिशिंग ट्रिपल तलाक, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कर दिया है।
तो ये जो पॉइंट है कोई नया पॉइंट नहीं है। यामी याग्निक ने ये भी कहा कि सरकार को इस देश की सभी महिलाओं की चिंता क्यों नहीं है, और ये इस पर बहस होती रही है। NCP के माजिद मेमन, उन्होंने भी अपनी बात रखी, और उनका कहना था कि उनकी पार्टी चाहती है कि 3 साल के जेल का जो प्रावधान है उसको बिल से हटा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी का फिर कहना था कि जिनको जेल जाने की चिंता है तो उन्हें 3 तलाक की जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहिए, तो आप जेल भी नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो नज़दीक जो पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं, सरकार को समर्थन करते हैं, उनका रेजिस्टेंस था। गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के हैं, उनका दावा था, उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, उनका कहना था कि ये राजनीति से प्रेरित है। जम्मू कश्मीर से आते हैं नज़ीर अहमद लोई, उन्होंने भी काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया, आइए सुनते हैं उन्होंने अपने विरोध में क्या कहा।
तलाक जो हमारे रिलीजन में है वो बिदत है, वो नहीं, इससे अल्लाह ताला हमें खुश नहीं होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी कुछ चीज़ है, मैंने अपनी बहनों से भी सुना, MP साहिबान भी सुना, और खुशी इस बात की है कि हमारे इस मुल्क में हर सब लोगों को बगैर मजहब मिलत हमारी बेटी हमारी माँ की चिंता है, जो मैं सुन रहा था। लेकिन एक आदमी को 3 साल के लिए सेक्शन 7C में उसको बंद किया जाए, हमारे रिलीजन में लेडी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों के सामने, जो भी कुछ है वो जिम्मेवार जो है वो मर्द है। अगर हमारा तलाक हो जाएगा, लेडी उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए जो जिम्मेवार है वो हस्बैंड है। जब आप हस्बैंड को ही जेल में रख देंगे तो उन बच्चों के साथ क्या करेंगे।
तो ये थे नज़ीर अहमद लोई जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, और अब सुनते हैं सरोज पांडे जो भारतीय जनता पार्टी हैं, उन्होंने इस बिल के समर्थन में राज्यसभा में क्या कहा।
कि कत्ल केवल वो नहीं होता जो खंजर से किया जाए, जख्म केवल वो नहीं होते जो जिस्म के लहू को बहाए, कातिल वो भी होता है जो लफ्जों के तीर चलाए, जख्म वो भी होते हैं जो रूह का नासूर बन जाए, जो 3 शब्द एक हस्ती खेलती ख्वातीन को पल भर में एक जिंदा लाश में तब्दील कर दे, उनका इस्तेमाल करने वाला शख्स यकीनन सजा का हकदार है।
ये थी सरोज पांडे, और लंबे चौड़े इस बहस के बाद आखिर में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्व में भी कानून पारित हुए हैं जिसमें लोगों को सजा का प्रावधान है। आइए सुनते हैं।
शारदा एक्ट 1959 हमने खत्म किया बाल विवाह से, तो क्या खाली छोड़ दें? तब जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना सर, तो एसेंशियल ऑफ द हिंदू मैरिज में यह लिखा कि पति की उम्र 21 साल होनी चाहिए, पत्नी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और जो इसका उल्लंघन करेगा तो सेक्शन 18 में कहा उसको 2 साल की सजा होगी। ये तो आपकी सरकार ने किया गुलाम नबी आजाद साहब, और उस समय तो ये नहीं कहा कि हम सजा देंगे तो वैवाहिक जीवन गड़बड़ा जाएगा। और क्या कहा सर, इफ ए वाइफ और ए हस्बैंड हैज ए स्पाउस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, द वाइफ और द हस्बैंड द केस में भी, देन द मैरिज इज वॉइड। और ये नहीं रुके सर, 494 में 7 साल की सजा भी होगी। तो जो बार बार आज कह रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया, तो करने की जरूरत क्या थी? तो गुलाम नबी आजाद साहब, आपने तो आज से 55 साल पहले यह काम किया कि अगर पत्नी के रहते तुम दूसरी पत्नी ले आए, बीवी ले आए, या पति के रहते पत्नी दूसरा पति ले आई, तो मैरिज बिल्कुल गैर कानूनी है और 7 साल की सजा भोगो।
तो ये थे रविशंकर प्रसाद।
यानी कि अब तीन तलाक जो है वो तीन तलाक की बिद्दत अब गैर कानूनी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत खरे इतनी जानकारियों के लिए। मोदी सरकार तीन तलाक बिल को पास होने को मुस्लिम महिलाओं की जीत बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि इससे पुरुषों को निशाना बनाया जाएगा। उसका कहना है कि अगर ऐसी सुरक्षा देनी है तो सभी महिलाओं को दी जानी चाहिए। तीन तलाक के खिलाफ कई मुस्लिम महिलाओं ने आंदोलन चलाया है, इन्हीं में से एक ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा शाइस्ता अंबर भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने तीन तलाक बिल पर क्या कहा, जरा सुने।
ये एक ऐतिहासिक जीत है, और ये मैं समझती हूँ कि जो काम हमारे उलमाए किराम को, पर्सनल लॉ बोर्ड को करना चाहिए था कि तलाक की बिदत जो अल्लाह को पसंद नहीं है और उसको बढ़ावा दिया गया, उसको प्रैक्टिस में रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको मना किया इसके बाद भी तीन तलाक होते रहे। ये तीन तलाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी होते रहे और अब कानून बन गया है। अब ये कानून भले इसमें कुछ थोड़ी सी क्रिमिनल ऑफेंस का है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 100 कोड़े जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला हमारे खलीफा जो इस्लाम की तारीख में खलीफा दोयम थे, जो 100 कोड़े कहा था उसको उन्होंने प्रैक्टिस में किया था, और तलाक के कानून का मिसयूज करते रहे। जिन लोगों ने तलाक के कानून का मिसयूज किया है उनको मैं समझती हूँ, उनके लिए ये एक वार्निंग है कि आप तलाक बिदत नहीं होनी चाहिए, जो भी हो वो सूरे तलाक कुरान पाक के हिसाब से काउंसलिंग में होना चाहिए, और जो भी औरत हर वक्त तलाक का डर बना रहता था वो तलाक का डर से वो खत्म हुआ है, अब वही बात को काउंसलिंग होनी चाहिए, गवाह होनी चाहिए।
शाइस्ता जी,
कानून बनना जरूरी था
जी। शाइस्ता जी
बहुत खुश
जी, बिल्कुल शाइस्ता जी आप खुश हैं, लेकिन शाइस्ता जी जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था और जिसने कहा था कि इसको वापस ड्राफ्ट कमेटी को भेजना चाहिए, उनका मानना है कि इसको आपराधिक नहीं बनाना चाहिए, जेल में नहीं भेज देना चाहिए शौहर को, तो इस पर आपका क्या कहना है?
जी मैंने भी इसकी सिफारिश की थी कि जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट में पेनाल्टी और साल भर के लिए है, और कोई भी ऐसा कदम ना होने पाए कि जिससे कभी कभी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हस्बैंड जो वाकई शरीफ और ईमानदार है और अपनी ड्यूटीज पूरे करता है, कहीं मिसेज जाने अनजाने में किसी के कहने से, किसी के बहकाने से, किसी की साजिश में अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट शौहर के साथ में बुरा हो जाता है तो वो उसकी पूरी जिंदगी खराब होगी, और कोई भी पेरेंट्स अपने लड़के की शादी करने में डरेंगे। ये बात मैंने माननीय कानून मंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इसकी बात कही थी, लेकिन अब कानून बन गया है तो अब उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, और मैं समझती हूँ कि 100 कोड़े की जो सजा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने तय की थी उससे तलाक के कानून को खिलवाड़ ना बन जाए, अब तलाक का गलत इस्तेमाल ना हो।
शायसा जी, रोक लगे। आपको नहीं लगता कि इसका क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे दहेज कानून को लेकर भी गलत इस्तेमाल होता था?
बताया जी, मैंने आपसे यही तो बता रही हूँ कि बहुत से पेरेंट्स अपने बेटे की शादी करने में डरेंगे और उनको लगेगा कि कहीं बेटियां, क्योंकि आज के टाइम में तो लोग बीवियां कभी कभी सब्र और कुर्बानी और बर्दाश्त करने की उनकी आदत कभी कभी कुछ औरतों में कम होती है, वो बात बात पे तलाक पे धमकी या दहेज की धमकी या किसी बात पे नाराजगी जाहिर हो गई या किसी की साजिश में आ गई या पेरेंट्स की किसी वजह से आ गई, तो इससे कभी कभी घर का माहौल खराब होता है और पति हर वक्त डरा रहे, तो ये इसको इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके इसमें कानून होना चाहिए था।
ये थी तीन तलाक के विरोधी शाइस्ता अंबर। एक तरफ जहां शाइस्ता अंबर जैसी मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक कानून का समर्थन कर रही हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि तीन तलाक के लिए कानून लाए जाने की जरूरत नहीं थी। मुस्लिम संगठन इमरत शरिया के महासचिव नसीर रहमान कासमी ऐसे ही शख्स हैं। उन सबसे थोड़ी देर पहले बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी ने बात की।
भाई जो कानून है इससे तो हम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि इससे परेशानी होगी। दूसरी बात ये कि ये तलाक को ख़त्म भी करने की बात करता है ये एक, और उसके साथ ही तीन साल के लिए उसके शौहर को जेल भी डालता है। तो तीन साल तक तो आपने उसको रोड पर खड़ा कर दिया, उस बीवी को। तो महिलाओं के हक में ये बिल तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आईन है, जो दस्तूर है, उसमें जो हक दिया हुआ है उसके खिलाफ वर्जी है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये जुल्म का कानून है, बिल्कुल इस लायक नहीं है कि इसको लागू किया जाए।
जी, सरकार का कहना होता है कि अगर इसमें सजा का प्रावधान होगा तो लोग डरेंगे और ये इस डर के कारण वो तलाक देने से बचेंगे।
भाई जब तलाक ही नहीं पड़ी तो सजा क्यों दे रहे हैं, वो भी तीन साल की सजा। तीन साल तक उस बीवी का, उसके बच्चों को कौन खाना खर्चा देगा? सरकार इसका तो जवाब दे।
क्या इस कानून का कुछ भी फायदा नहीं होगा?
भाई देखिए, हम लोगों ने जो राय दी थी कि किसी भी कानून को उसमें समाजी इस्लाह के लिए जरूरत है कि उस तरीके के काम की जाए जिससे समाज में बदलाव। मुस्लिम महिलाएं तो 60% ऐसे ही गरीबी रेखा वाली जिंदगी गुजारती हैं। तो तीन साल के लिए अगर उसका शौहर जेल जाएगा तो उसके बच्चों को उसको कौन खाना खर्चा देगा?
क्या उपाय हो सकता है आखिर तीन तलाक को रोकने के लिए, और क्या किया जा सकता है?
एक बात देखिए, जब सरकार खुद कहती है एक साल पहले कि पूरे मुल्क में 200 केसेस हुए, तो इसका मतलब है कि समाजी इस्लाह का काम हो रहा है। तो आप इंतजार तो कीजिए, कोई समाजी इस्लाह का काम तो चंद दिनों में तो होता नहीं, उसमें वक्त लगता है।
ये थे इमरत शरिया के महासचिव नसीर रहमान कासमी। बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। संसद से लेकर सड़क तक आज उन्नाव रेप कांड का मामला गूंजा। रेप कांड की पीड़िता रविवार को रायबरेली में एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद आज विपक्ष ने बीजेपी पर हमला किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान जारी करने की मांग की। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
उन्नाव में रेप पीड़ित लड़की के परिवार वालों के साथ हुए ट्रक हादसे के विरोध की आवाज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जीपीओ पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं पीड़ित लड़की और उसके परिजनों से मिलने के लिए आज राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी गए।
पूरी तरीके से इलाज हो, पहली प्राथमिकता ये है। जो इलाज है उसका सारा खर्चा सरकार उठा रही है। पीड़ित पक्ष के लिए जो भी उनकी मांग थी, जो भी धारा में कहा था, उस धारा में FIR दर्ज हुआ है। जो पीड़ित पक्ष के संदर्भ में कहा गया है कि जिससे एक्सीडेंट हुआ था, अब प्रथम दृष्टया तो यही आया, आज समाचार पत्रों में यही लिखा है कि वो एक दल विशेष के उनका रिश्तेदार है।
इस बीच उन्नाव के बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की और उसके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में दोनों का इलाज चल रहा है। सुरक्षा कारणों से भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पीड़ित परिवार की मांग पर रायबरेली जेल में बंद पीड़ित लड़की के चाचा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बुधवार को 12 घंटे की पैरोल मिल गई है, ताकि वो अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार कर सकें। इस मामले को लेकर आज संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर अभियुक्त को बचाने का आरोप लगाया।
एक नाबालिग सामूहिक बलात्कार, उनकी पिता की मौत और नाबालिग अपने न्याय की गुहार करते हुए चीफ मिनिस्टर की मकान के सामने आत्मदाह करने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद उनकी चाची को मौत होती है, उनकी मसौरे को मौत होती है और सर एक ट्रक ने
उनका कहना था कि सारे घटनाक्रम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पीड़ित परिवार को परेशान किया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं और सरकार मुख्य अभियुक्त को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है।
ये शर्मसार घटना है तो हम सबको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा।
इस मामले में मुख्य अभियुक्त विधायक कुलदीप सेंगर के बचाव में लोकसभा में जगदम्बिका पाल उतरे। उन्होंने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अधूरी बात को पूरा किया कि जिस ट्रक से दुर्घटना हुई है उसका मालिक समाजवादी पार्टी का नेता है।
राज्य के विषय को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कि पीड़िता के परिवार के साक्ष को मिटाने के लिए ट्रक से हत्या करने का प्रयास हुआ है। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक समाजवादी पार्टी के नेता।
वहीं अपने विधायक को बचाने के आरोपों से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी ने अचानक ये खबर दी कि विधायक तो पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि उनका निलंबन पहले ही हो चुका है। बहरहाल निलंबन कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ इसकी जानकारी पार्टी के किसी नेता को नहीं है। वहीं मीडिया जगत में इस बात की भी चर्चा होती रही कि पार्टी इस दबाव में विधायक का निष्कासन भी करेगी या फिर निलंबन ही पर्याप्त होगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी उन्नाव।
उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर पिछले साल बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर के माखी गांव में लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि विधायक की छवि खराब करने के लिए किया गया है। समीर आत्मज मिश्र उन्नाव के माखी गांव पहुंचे और वहां के लोगों से बात की।
उन्नाव जिले के माखी गांव में है और ये गांव वही है जहां पे बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का घर है। इस समय पूरा वो चर्चा में है। गाँव के लोग उस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि इनको क्या लग रहा है कि उनके गांव की छवि किस तरीके से बन रही है।
अरे साहब, ये बेकार की सब बातें हो रही हैं। वह इतने सीधे साधे आदमी रहे, जो उनको कहूँ कुछ हो ही नहीं पावा। दिन तक कोनो झगड़ा फजूल कुछ, लेकिन उनका गलत सलत फंसावा जा रहा है।
विधायक जी कबो ऐसे मान न रहे हैं और न कबो इसकी न इनकी, जो ये घटना यहाँ सब दिखाई जा रही ये सब गलत है। बस इल्जाम सब लगाए जा रहे हैं उनके पर।
कैसे
सरकार है कि जो कुछ सुनवाई नहीं, हम अपन जन के हो रही की न कुछ सुन
रही। क्या नहीं सुनवाई कर रही, कुछ आपने
सुनवाई सरकार नहीं कर रही की।
हाँ आंटी, क्या कह रही है आप, क्या कह रही
है? अरे भैया, हमारा विधायक रहते रहे तो अब कोई मोहल्ले में मरी गया तो उनका ट्रैक्टर जाते रहे और लोग, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको 1,000-2,000 रुपए भी विधायक मदद करते थे। अब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, विधायक चले गए तो चाहे जो मुसीबत पड़े अपना झेलो।
बात जो दूसरी हो रही है, ये सब चीजें तो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये सब वो करेंगे ही, लेकिन जो आरोप है, इस तरीके की बातें हैं उसको लेकर के यहाँ पे क्या?
तो हमारे विधायक को गलत फंसाया जा रहा। विधायक जी कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और आज भी नहीं करेंगे। गाली गलौज कई बार हुआ है तो कहें दारू पिए हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो और अपना गेट बंद कर लो।
4-5 दिन जीते हैं जिंदगी से, तो ऐसे नहीं जीत के अगर मदद न करते होती हार जाती।
मतलब आप लोगों को कहना है कि पूरे गांव की मदद करते थे, लेकिन ये जो चीज हुई है, ये घटना हुई है, जिस आरोप लगाने वाले भी गांव के ही लोग हैं, ये सारी चीजें फिर
ये सब गलत है, बिल्कुल गलत हो रहा है।
कैसे गलत, कैसे आप कह सकते?
अब गलत हम बच्चे कह रहे हैं कि जब ऐसे रहे नहीं तो कैसे कह दे रही है।
हाँ, यहाँ ये बिल्कुल उस जगह के पास है, हम कुलदीप सेंगर के घर के पास जहाँ दुकान पे खड़े हैं, आपकी दुकान है। क्या नाम है आपका?
सुमन।
अच्छा, तो आप भी देख रही हैं कि पिछले 2-3 दिन से ये लोगों का आना जाना बढ़ गया है यहाँ पे।
हमारे दुकान में आते हैं पुलिस वाले, सौदा लेने आते हैं, बिस्किट लेने आते हैं, मसाला वगैरह सब लेने आते हैं।
अच्छा, जो यहाँ सिक्योरिटी टीम लगे
रोज आते थे।
अब विधायक जी के परिवार घर में कौन रहता है, यहाँ पे कोई रहता है कि नहीं रहता?
अब वहाँ हम जाते नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे 3-3 बच्चे स्कूल जाते हैं।
यहाँ कोई रहता नहीं है
विधायक के परिवार से, कोई यहाँ नहीं
रहता? जी कोई नहीं, बस वही उनके नौकर वोकर यहीं रहते हैं बस।
अच्छा,
यहाँ है ही नहीं को तो रहे को। अच्छा, उनके परिवार में कोई है ही नहीं। जो है तो दोनों भाई बंदा है, एक भाई तो नाम रहा वो हमारे ड्रेन के ही नहीं आउत जब ते हादसा हो गए, उन्हों का आरोप लगा दिन का तब ते वो बंद कई दिन का।
इनको फंसाने के लिए, इनकी छब बेकार करने के लिए विधायक जी की ये सब फंसाया जा रहा है और माखी का माहौल।
मतलब आप लोग ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि इसके पीछे उनका कोई हाथ है?
ना, विधायक जी का हाथ नहीं, विधायक जी का बिल्कुल हाथ ही नहीं।
ये थे उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर के माखी गांव के लोग। यूपी के बाद अब रुख करते हैं कर्नाटक का। कॉफी के प्रसिद्ध आउटलेट कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ कल कर्नाटक के मंगलुरु में नेत्रावती नदी के पुल के पास गायब हो गए। कोस्ट गार्ड के जवान उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 59 वर्षीय सिद्धार्थ को भारत के हर शहर तक कॉफी पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कल शाम करीब 7 बजे वीजी सिद्धार्थ अपनी कार से उतर गए और अपने ड्राइवर से कहा कि वो कार आगे ले जाएं और वो पैदल आएंगे। आधे घंटे के बाद ड्राइवर सिद्धार्थ के फोन पर संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उनका नंबर बंद आता है। इसके फौरन बाद ड्राइवर ने सिद्धार्थ के परिवार को बेंगलुरु में संपर्क किया। बाद में पुलिस और दमकल कर्मियों के अधिकारियों ने अंधेरे में उन्हें ढूंढने की कोशिश की। मंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हनुमंतराय ने पत्रकारों से कहा, कल रात को ही गोटाकुरन दमकल कर्मियों और पुलिस ने बहुत देर उन्हें ढूंढने की कोशिश की। आज तत्राशक बल भी बचाव अभियान में शामिल हुआ है। ये थे DCP हनुमंतराय के शब्द। नेत्रावती नदी सीधे अरब सागर में मिल जाती है। सिद्धार्थ के लापता होने के बाद ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने पहले सकलेशपुर जाने के लिए कहा और फिर मंगलुरु जाने के लिए कहा। इस हादसे के बाद कई सवाल उठे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक चिट्ठी में अपनी कंपनी के डायरेक्टरों को बहुत कुछ लिखा भी है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने कहा कि वो इसकी जाँच कर रहे हैं। लेकिन कैफे कॉफी डे शुरू करने से कॉफी उगाने वालों पर क्या असर पड़ा है? डॉक्टर SM कावेरियप्पा 2007 से 2009 और 2014 से 2016 तक कॉफी बोर्ड के उप अध्यक्ष थे। उन्होंने BBC को बताया,
आई नो हिम वेल बिकॉज आई वाज वाइस चेयरमैन ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट्स हाउ आई वाज इन टच विद हिम।
कैफे कॉफी डे की वजह से लोग कॉफी पीने लगे जिसके बाद कॉफी का उत्पादन बढ़ा। इस मामले पर कोई भी बहस नहीं कर सकता है। उस जमाने में कॉफी का मार्केट अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर रहता था। सिद्धार्थ की वजह से हर साल देश का कॉफी का घरेलू उपयोग 2% बढ़ा। इस बात पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। ये थे डॉक्टर SM कावेरियप्पा के शब्द। सिद्धार्था ने 1996 में कैफे कॉफी डे का पहला आउटलेट बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर खोला था और उस जमाने में इंटरनेट ज्यादा जगहों पर नहीं होता था। उस समय कैफे कॉफी डे की कैपेचिनो के साथ आपको इंटरनेट भी मिलता था तो इससे लोगों में एक तरह का उत्साह रहता था। सिद्धार्था और तब के CEO नरेश मल्होत्रा ने यह निर्णय किया था कि वो अमृतसर जैसे शहर में भी सुबह सुबह ग्राहकों को कॉफी पिलाएंगे। 2001 से अभी तक ना सिर्फ भारत में 1700 से भी ज्यादा कैफे कॉफी डे खुल चुके हैं बल्कि विदेश में भी इनके आउटलेट्स हैं। कोडगु के कॉफी ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष MB देवया कहते हैं, कुछ साल पहले हमने वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ हमें 5 रुपये में कॉफी मिली थी। ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ कॉफी मिलेगी। ये थे MB देवाया के शब्द। डॉक्टर कावेरियप्पा मानते हैं कि सिद्धार्था बहुत ही अच्छे इंसान थे, हालांकि वो बहुत ही शर्मीले भी थे। लेकिन डॉक्टर कावेरियप्पा का मानना है कि वो बहुत ही उत्साही इंसान थे जिसकी वजह से उनको कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल कैफे कॉफी डे ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि उनकी कंपनी पेशेवर रूप से चल रही है और ग्राहकों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्था पूर्व कर्नाटका मुख्यमंत्री और भारत के विदेश मंत्री रहे SM कृष्णा के दामाद हैं। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
BBC समाचार। लोकसभा में पारित होने के बाद 3 तलाक पर विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके पर नियंत्रण करने की लड़ाई में बीते 3 महीनों में करीब 500 आम नागरिक मारे गए हैं। ब्रिटिश मुद्रा पाउंड की कीमत लगातार गिरती जा रही है। बीते 2 सालों में पाउंड डॉलर के मुकाबले निम्नतम स्तर पर पहुँच गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाज़त। नमस्कार।